तारीख 11 जुलाई दिन शनिवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। ग्रीस संसद ने कर्ज संकट के नए प्रस्ताव को दी मंजूरी, लिए गए हैं कई मुश्किल फैसले।
These proposals are of course painful, but there are some positive things there.
संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की भेंट, लेकिन कई लोग इसे मान रहे हैं बाहरी दबाव का नतीजा।
जवाब या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पड़ा हुआ है इसका, या फिर अमेरिका में पड़ा हुआ है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में।
क्या चीन की भी कोई भूमिका है इस मामले में? सुनेंगे खबरें खेल की और होगी अखबारों की समीक्षा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत में कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन किसी समझौते की राह में अब भी कई बाधाएं हैं। केरी ने कहा,
I think it's safe to say that we have made progress today. The atmosphere is very constructive.
मुझे लगता है कि ये कहना ठीक होगा कि हमने कुछ प्रगति की है, माहौल सकारात्मक है। अब भी कुछ मुद्दे हैं और मैं उन पर बात करूंगा, लेकिन लगता है कि हमने कुछ मुद्दों को सुलझा लिया। जॉन केरी के शब्द। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आज भी बातचीत होनी है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि बातचीत में प्रगति काफी धीमी है, जबकि ईरान का कहना है कि दूसरे पक्ष ने अपनी मांगें बदल ली हैं। ग्रीस की संसद ने यूरोपीय संघ से राहत पैकेज पाने के लिए प्रधानमंत्री अलेक्सी सिप्रास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिप्रास ने संसद के सामने ये माना कि उनके प्रस्ताव में कई बातें ऐसी हैं जो उन वादों से अलग हैं जो उन्होंने चुनाव में किए थे, हालांकि उन्होंने दावा किया कि ये पिछली शर्तों से बेहतर है। सिप्रास चाहते हैं कि कर्जदाता उन्हें 2018 तक ग्रीस के कर्जों के लिए 53.5 अरब यूरो दे दें। बदले में वो पेंशन सुधार, टैक्स बढ़ोतरी और निजीकरण पर राजी हुए हैं। इस बीच आज ब्रसेल्स में यूरोजोन के देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें ग्रीस के ताज़ा प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रविवार को यूरोपीय संघ के नेता ग्रीस के कर्ज संकट को लेकर मिलने वाले हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम के बावजूद झड़पों की खबरें हैं। ये संघर्ष विराम कुछ ही घंटे पहले शुरू हुआ है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने सना में हवाई हमले किए हैं। इससे पहले सुरक्षा परिषद ने यमन में सभी पक्षों से कहा है कि वो आज से शुरू हुए 6 दिन के संघर्ष विराम का पालन करें। एक बयान में सुरक्षा परिषद ने कहा कि किसी भी पक्ष को इस संघर्ष विराम का फायदा उठाते हुए नए इलाकों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। यमन में कई महीनों से सऊदी समर्थित यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। हालांकि एक हूती नेता और एक सऊदी अधिकारी ने संघर्ष विराम को लेकर अपनी आशंकाएं पहले ही जता दी हैं। चीन में सुपर टाइफून शान होम की वजह से बारिश शुरू हो चुकी है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि वो जेजियांग प्रांत में तूफान के संभावित प्रभाव वाले इलाकों से 8.5 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही हटा चुके हैं। ये इलाका चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के दक्षिण में है। हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और ट्रेनें रद्द हैं। हजारों जहाजों को वापस बंदरगाह बुला लिया गया है। चीन के मौसम निगरानी केंद्र ने चेतावनी दी है कि ये जेजियांग में 65 साल में आया सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है। दक्षिणी जापानी द्वीपों में तूफान की वजह से 20 लोग जख्मी हुए हैं। स्विट्जरलैंड में फीफा में कथित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में लिए गए फीफा के एक अधिकारी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई का अधिकार छोड़ दिया है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये जेफरी वेब हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की पहली सभा आप सुन रहे हैं रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल पर साथ साथ। समाचार की शुरुआत करेंगे ग्रीस से। ग्रीस की संसद ने मुल्क को कर्ज संकट से उबारने के लिए तैयार किए गए एक नए आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को आज यूरोजोन के वित्त मंत्रियों के सामने रखा जाएगा, जो इस पर चर्चा करेंगे। ग्रीस इस माह अपने ऋण की किस्त नहीं चुका पाया और उसके बैंक बंद हो गए। कहा जा रहा है कि उसके पास नकदी की भी कमी है। वहाँ की वामपंथी विचारधारा वाली सरकार ने एक जनमत संग्रह भी करवाया, जिसमें जनता ने कर्जदारों जैसे IMF, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और दूसरे कर्जदारों की शर्तों को मानने से मना कर दिया। इस शर्त में खर्च में भारी कटौती की बात थी, लेकिन अब नया प्रस्ताव लगभग कुछ उसी तर्ज का बताया जा रहा है जैसा कि कर्जदारों की मांग पहले थी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुने अनुराग शर्मा से।
ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सी सिप्रास का रुख पिछले कुछ दिनों में बेहद नर्म पड़ा है। सिप्रास ने संसद के सामने ये माना कि उनके प्रस्ताव में कई बातें ऐसी हैं जो उन वादों से अलग है जो उनकी सिरिजा पार्टी ने चुनाव में किए थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ये पिछली शर्तों से बेहतर है और पिछले रविवार को हुए जनमत संग्रह में लोगों ने यूरो से ग्रीस के बाहर निकलने के पक्ष में वोट नहीं दिया था। लंदन में सिरिजा पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर मरीना प्रेंटोलिस ने कहा, ये प्रस्ताव कड़े हैं लेकिन इनमें कई सकारात्मक बातें भी हैं। इनमें पेंशन और वेतन में सीधी कटौती की बात नहीं है और हमारे पास 3 साल तक कम सरप्लस भी होगा। ये कठिन जरूर है लेकिन इस पर निर्भर करेगा कि हम कर्ज के मसले से कैसे निपटते हैं और क्या ग्रीस की अर्थव्यवस्था के लिए कोई निवेश पैकेज भी होगा। मरीना प्रिंटोलिस के शब्द। ग्रीस के बैंक अब भी बंद हैं। लोग 60 यूरो से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते। 20 यूरो के नोट खत्म होने की वजह से असल में ये सीमा भी 50 यूरो ही रह गई है। ग्रीस सरकार ने ताजा प्रस्ताव में यूरोजोन से 53.5 अरब यूरो की मांग की है। ग्रीस ने जो प्रस्ताव रखा है उसके मुताबिक शिपिंग कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, वैट की दर 23% कर दी जाएगी, पेंशनरों को मिलने वाला अनुदान 2019 तक धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, रक्षा खर्च पर 2016 तक 30 करोड़ यूरो की कटौती होगी, बंदरगाहों का निजीकरण होगा और टेलीकॉम कंपनी ओटीई में बाकी बचे शेयर बेच दिए जाएंगे। साथ ही अमीर द्वीपों को मिलने वाली 30% टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। इस बीच आज ब्रसेल्स में यूरोजोन के देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक होगी जिसमें ग्रीस के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रविवार को यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भी होगी और उसके 2 घंटे बाद पूरे यूरोपीय संघ के नेता जुटेंगे। हालांकि ग्रीस के नए प्रस्तावों को लेकर फ्रांस ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है, वहीं जर्मनी में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने ग्रीस के प्रस्ताव को गंभीर और विश्वसनीय बताया है। लेकिन बर्लिन शेयर बाजार के ज्वाइंट चीफ एग्जीक्यूटिव आर्टर फिशर ने कहा कि जर्मनी को ग्रीस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ग्रीस सरकार ने बीते 6 महीनों में वित्तीय तालिबान की तरह बर्ताव किया है और अपनी साख खो दी है। इसलिए जर्मन संसद के सामने सवाल ये है कि हम क्या 6 या 12 महीने में इस पर फिर बात करेंगे, क्या वो अपने प्रस्ताव पर टिके रहेंगे, हाँ या ना, क्योंकि अगर वो नहीं टिकते तो मर्केल को बड़ी समस्या होने वाली है। आर्टर फिशर के शब्द। लेकिन ग्रीस के सामने समस्याएं इतनी ही नहीं है। उसे 20 जुलाई तक यूरोपीय सेंट्रल बैंक को 3 अरब यूरो चुकाने हैं। इसके अलावा अगर ग्रीस के प्रस्ताव मंजूर हो भी जाते हैं तब भी उन्हें ईयू के कई सदस्य देशों की संसदों से मंजूरी लेनी होगी, जहां इसे फिर चुनौती मिल सकती है।
अनुराग शर्मा। और बात ग्रीस की आगे ही बढ़ाएंगे। ग्रीस के नए प्रस्ताव में पेंशन सुधार के अलावे करों की बढ़ोतरी, बंदरगाहों के निजीकरण, टेलीकॉम कंपनी के शेयरों को बेचने की बात कही गई, साथ में रक्षा बजट में कटौती की बात भी है। विनीत खरे ने लंदन में आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर सुनील पोशाक वाले से बात की और उनसे पूछा कि अब आगे क्या।
एक जो स्थिति जो अभी आई है वो ये है कि लगभग सभी जो लेनदार हैं वो लोन की जो अमाउंट है उसमें कोई घाटा लेना नहीं चाहते। वो जनरली वो इस बात से शायद सहमति बन रही है कि इनका जो ऋण वापस करने की जो टाइम है वो टाइम वो बढ़ा सकते हैं और जो ब्याज की दर जो उस पर चार्ज कर रहे हैं उसको शायद कम हो सकता है। मगर आप कुल मिला के अगर आप ये देखें जो नया प्रस्ताव जो ग्रीस की गवर्नमेंट ने पेश किया है वो एक्चुअली लेनदारों की मांगों से काफी कुछ मिलता जुलता है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये जो सारा एक तरीके से जो तमाशा हुआ रेफरेंडम का और जिसमें जो ग्रीस जो करंट गवर्नमेंट है ग्रीस की उन्होंने जो ये बताने की कोशिश की कि नहीं नहीं हम जो है अकड़ कर यूरोपियन लेनदारों से बात करेंगे, यूरोपियन मेंबर्स से बात करेंगे, वो सब कुछ जो है एक तमाशा लग रहा है। क्योंकि अब तो ये लोग उतर कर इसी स्थिति पर आ गए हैं कि जो भी आप कहेंगे वो हमको एक तरीके से मंजूर है।
आज जब यूरो जोन की जो वित्त मंत्री हैं उनकी बैठक होगी ब्रसेल्स में शनिवार को, तो उनके सामने क्या चैलेंजेस होंगे या फिर वो क्या देखेंगे? क्योंकि अगर हम मोटा मोटा देखें तो जर्मनी हो, फ्रांस की तरफ से स्वागत किया गया है ग्रीस की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनका।
देखिए एक जो सबसे बड़ी समस्या है यूरोप के लिए वो ये है कि बेल आउट की जो अमाउंट है वो करीब करीब 50-54 बिलियन यूरो के आसपास की बात है। मगर ये जो 8-10 दिनों में, ये जो 15-20 दिनों में ये जो सारा रेफरेंडम का तमाशा हुआ और उसमें जो ECB के द्वारा इनको जो सहायता नहीं दी गई, बैंक्स को जो पैसा है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसके कारण हुआ ये कि ग्रीस की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है, तो बैंकों में जो है पैसा खत्म होता जा रहा है, इम्पोर्टेड गुड्स के लिए उनको जो पेमेंट करना है उसके लिए पैसा नहीं है, तो ये सब स्थिति लगभग इतनी विचित्र हो गई है कि जिससे ग्रीस की जो जीडीपी है उसकी जो आर्थिक वृद्धि है उसमें कमी आ गई है। ये जो सारा नुकसान 15-20 दिन एक महीने में जो हुआ है, इसके नुकसान का जो असर है वो बेल आउट पैकेज पे होगा, क्योंकि 53-54 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज ओरिजिनल ग्रीक गवर्नमेंट के प्रस्ताव में है, मगर वो बढ़कर कहीं 70-80 बिलियन तक हो सकता है। तो एक जो मुख्य जो विषय फाइनेंस मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे यूरोप के, वो ये करेंगे कि कितनी अमाउंट ग्रीस को दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी आवश्यकता से कम अमाउंट उनको अगर अप्रूव करते हैं तो फिर वही समस्या बन जाएगी, क्योंकि ग्रीस की जो आर्थिक वृद्धि में अगर जोर नहीं पकड़ा तो वापस लोन 2-3 साल बाद वही उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पर वही अपने आप को पाएंगे कि वो वापस नहीं कर पा रहे ऋण को या उसके ऋण के ब्याज को पे नहीं कर पा रहे हैं।
आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर सुनील पोशाक वाले, और उनसे बात की थी विनीत खरे ने। और अब भारत और पाकिस्तान की रूस के उफा शहर में संघाई सहयोग संगठन या SCO की बैठक के दौरान कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। बैठक के बाद जारी साझा बयान में दक्षिण एशिया से आतंकवाद को खत्म करने, आतंकवाद पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भेंट और मुंबई हमले से जुड़े मुकदमे में तेजी लाने की पर सहमति बनी है, ये बात कही गई है। बयान में दोनों देशों के बीच दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की बात कही गई कि उस पर भी बात होगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि ज़मीनी हालात नहीं बदले हैं दोनों मुल्कों के बीच। नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ये कहती रही थी कि इस पर उस कड़ा रुख अपनाया था उसने बात पे। इस मुद्दे पर BBC संवाददाता शकील अख्तर ने सुरक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से बात की, और सबसे पहला सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत के लिए तैयार हो गए।
देखिए, इसका अगर मैं ऑनेस्ट जवाब दूँ तो मुझे नहीं पता, और शायद किसी को भी नहीं पता। जवाब या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पड़ा हुआ है इसका, या फिर अमेरिका में पड़ा हुआ है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ था जिससे ये उम्मीद बांधी जाए कि अगर एक डायलॉग प्रोसेस शुरू होगा तो वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो अगर अब ये इस तरह का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है तो या तो ये जल्दबाजी में किया गया है या फिर बेवकूफ़ी में किया गया है।
सुशांत, आपने इशारा किया कि हो सकता है कि ये बातचीत अमेरिका के दबाव में हुई हो, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे भी हालात होंगे कि यहाँ वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान के दौरे पर जाएं और बातचीत और आगे बढ़े?
हो सकता है कि ये चले भी जाएं, लेकिन उससे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के माबैन, क्या वो एड्रेस होंगे? मुझे नहीं लगता। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं खित्ते में, उससे अगर हम पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाता है भारत के बनस्बत। अफगानिस्तान का जो मामला था वो पाकिस्तान को लग रहा है कि उनकी तरफ सुलट रहा है। चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा एड के पैकेज की बात हो रही है जो पाकिस्तान समझता है कि उसकी डेस्टिनी को वो चेंज कर देगा। और तीसरा, जो अमेरिका और बाकी देशों से एक ज़माने में एक दबाव पड़ता था पाकिस्तान के ऊपर, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। और यहाँ तक ही नहीं, उनको अब हथियार भी मिल रहे हैं और एड भी मिल रही है। तो पाकिस्तान को ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो जिस देश को वो अपना असली दुश्मन मानता है उसके साथ दोबारा से कोई एंगेजमेंट करे?
सुशांत, वज़ीर आज़म के इस अचानक फैसले पर यहाँ खुद हिंदुस्तान के अंदर अपोजिशन की तरफ से काफ़ी नुक्ताचीनी हुई है, खुद BJP के अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो ये पॉलिसी है ये एक ब्रॉडर, उसको यहाँ पर सपोर्ट हासिल नहीं है?
देखिए, सपोर्ट तो मेरे ख्याल नहीं हासिल। जो ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि अब की बार 70 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया है जो पुरानी वाली फेल्ड पॉलिसी जो है, जो बार बार हमने रिपीट की, उससे हट करके कोई नई पॉलिसी बनाएंगे। मेरे ख्याल जैसे पहले 14 प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान की तरफ रवैया अडॉप्ट किया, 15वां भी वही कर रहा है, और इसका भी हशर वही होगा जो बाकी पहले 14 का हुआ।
सुरक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन कई बात कर रहे थे, जल्दबाजी, बेवकूफ़ी और दबाव की बात, खासतौर पे अमेरिका के दबाव की बात उन्होंने उठाई। تو کچھ لوگ اسے چین اور روس کے دباؤ سے بھی اس پوری بات چیت کو، اس ملاقات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بھارت کے پردھان منتری اور پاکستان کے پردھان منتری کی ملاقات کو۔ اس پر چین میں ٹائمز آف انڈیا کے پترکار سیبل داس گپتا سے ونیت کھرے نے بات کی۔
چین کا تو کردار ہے ہی، اس وقت چین کو سلک روڈ بنانا ہے، پاکستان میں تو شروع ہو گیا ہے کام، تو اس وقت چین کو اس بات میں فائدہ ہے کہ دونوں اکٹھا رہے، لڑے نہیں۔ دس از مور این اکنامک موٹیویشن۔ بھارت کے سیکورٹی ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کا رتوا جو ہے دنیا میں، اس کو آپ اگر بڑھائیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ پہلے سوال یہ ہے کہ اگر سنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں پہلی بار بھارت اور پاکستان جڑ گئے ہیں، وہ دونوں نیوکلیئر پاورڈ نیشنز ہیں، دوسری طرف روس اور چین بھی نیوکلیئر پاورڈ نیشنز ہیں، تو چار چار نیوکلیئر پاور بم والے نیشن سنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں آج ہے، جس سنستھان کو کوئی بڑا مانتا ہی نہیں تھا، وہ اچانک سے امریکہ کے ناٹو کے مقابلے میں مضبوط ہو گئی ہے۔ اور یہ افغانستان، ان کا آبزرور ہے، تو افغانستان میں ایس سی او کا رول بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ناٹو کا رول کم ہو جائے گا، تو امریکہ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ دوسرا، بھارت کو یہ سوچنا ہے کہ اس سے چین کی مضبوطی بڑھ رہی ہے، کیونکہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن چین میں بیسڈ ہے اور چین کنٹرول کرتی ہے، تو اس دنیا میں اگر امریکہ کے مقابلے چین کو اتنا زیادہ مضبوط آپ کرتے ہو تو بھارت کے لیے فائدہ کارک ہے یا نقصان کارک ہے؟ سب سے بڑا فائدہ چین کو ہوگا، کیونکہ چین آج پیس بروکر بن جائے گی۔ بھارت ہمیشہ کہتے آئی ہے کہ ہم تھرڈ نیشن کو الاؤ نہیں کریں گے، ایک زمانے میں امریکہ کو بھی الاؤ نہیں کیا تھا پاکستان اور بھارت کے رشتے میں، اور تھرڈ نیشن والا پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے۔ پہلی بار بھارت نے چین کو یہ موقع دیا، یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گیمبل ہے۔
بیجنگ سے سیبل داس گپتا۔ اور اب سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد، پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پترکار احتشام الحق صاحب۔ احتشام صاحب، سواگت ہے آپ کا کاریکرم میں۔ بھارت کی بات جیسے سنی، یہاں ایک سرکشا سلاحکار سے، ایک سرکشا وشیشگ سے ہم نے بات کی، انہوں نے جلد بازی، بیوقوفی، امریکہ کا دباؤ، دوسری طرف چین کے دباؤ کی بات کہی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اخبار کیا اسی طرز پر بات کر رہے ہیں؟
دیکھیے جی، تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ آج سارے اخبارات، پاکستان کے بڑے اخبار، انگریزی کا بڑا اخبار ہے ڈان، پھر دی نیوز ہے انگریزی کا بڑا اخبار، پھر اس طرح سے جنگ اردو کا بہت بڑا اخبار ہے، نوائے وقت ہے، ایکسپریس ہے، دنیا ہے، نئی بات ہے، سارے اخبارات بہت اچھے کے بعد ہیڈ لائن، بیسٹ ہیڈ لائن کے ساتھ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 پوائنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا بہت زیادہ اس کو زور دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن کی طرف سے اور اینالسٹ تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی جو کہا گیا ہے کہ یہ مودی سرکار کو طرف زیادہ جھکاؤ ہے، کیونکہ بمبئی دھماکوں کا ذکر ہے، دہشت گرد کشمیر کا رو کا ذکر نہیں ہے، تو یہ احساس پر چلنی ہے، لیکن زیادہ تر کر دیا ہے خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جی مودی صاحب نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا پاکستان آنے کے لیے 2016 میں جو ساتھ سمٹ ہوگی، اسی طرح سے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر اب ملیں گے آپس میں، اسی طرح سے بارڈر فورس بھارت کی اور پاکستان کے رینجرز کے لوگ ملیں گے، ڈی جی ملیں گے، تو عام طور پہ اخبارات جو لکھ رہے ہیں کہ اس سے تناؤ جو ہے نا وہ کم ہوگا، اور یہ جو ایک دفعہ پھر موقع ملے گا بات چیت کا کہ آگے معاملات کو لے کے جایا جائے۔
یہ بتائیے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کافی وہاں ایک ایموشنل، ایک طرح سے اس کا پاکستان میں وہ اس کا اثر ہوتا ہے، چونکہ اس کا خاص طور پہ ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کو لے کے کوئی سوال؟
دیکھیں، اس پہ بہت سوال اٹھائے ہیں، اور خاص طور پہ حریت لیڈروں کے بیانات بہت زیادہ پاکستان میں اس حوالے سے چلے ہیں، یاسین ملک کا، باقی لوگوں کا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا، اور پاکستان کے اپوزیشن لیڈروں نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے، ٹیلیویژن کے جو ٹاک شو ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے
جی،
لیکن اس طرف سے بھی کوئی فارمل جواب نہیں آیا۔ اب ہماری سیکٹری لیول پہ جنہوں نے بات کرنی ہے، پرائم منسٹر واپس آئیں گے اس کا جواب دیں گے، تو اس حوالے سے بہت سارے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کشمیر کے مدعے کا ذکر نہیں کیا گیا۔
بہت بہت شکریہ احتشام الحق، اسلام آباد سے۔
बीबीसी इंडिया बोल।
व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत से पूरा मामला रहस्यमय हो गया है। क्या व्यापम घोटाले की जांच इसकी सबसे कमजोर कड़ी है? आम आदमी इस घोटाले से कैसे प्रभावित हुआ? 11 जुलाई के इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 बजे इन नंबरों पर मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और पाकिस्तान के बाद एक नज़र अब भारत के अखबारों पर भी। अनुराग, ये बताइए कि भारत के अखबार क्या मोदी और नवाज की मुलाकात से छाए हुए हैं या कुछ नीचे है?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज के ज़्यादातर अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत को खबर बनाया है। दैनिक भास्कर लिखता है, मोदी के करीब नवाज। अखबार ने सवाल पूछा है कि 3 कदम बढ़े लेकिन कितना बढ़ेंगे। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, वार्ता भारत की शर्तों पर। और जैसा कि एहतशाम उल हक कह रहे थे, दैनिक जागरण ने भी यहाँ पर उसको खबर बनाया है, फिक्र में घुला पड़ोसी। नवारा टाइम्स की सुर्खी है, कश्मीर पर घिरे शरीफ। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, मोदी पाकिस्तान जाएंगे। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, फिर शुरू होगी रुकी हुई बात, इस्लामाबाद जाएंगे मोदी, मुंबई हमले की सुनवाई तेज करेगा पाकिस्तान। इस मुलाकात को लेकर भाजपा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की बात मानी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने रुख नरम कर लिया। बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा की जीत भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। दैनिक भास्कर लिखता है, महागठबंधन को झटका। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार में पहली परीक्षा में महागठबंधन फेल। बात राष्ट्रीय राजनीति की ही करें तो दैनिक जागरण ने खबर दी है कि सोनिया गांधी की इफ्तार की दावत से विपक्ष ने दूरी बना ली है। अखबार का कहना है कि ममता, मुलायम और लालू जैसे नेता इस इफ्तार की दावत से गैर हाजिर रह सकते हैं। फैसल साहब, एक दिलचस्प बात भी है, एक एक्सक्लूसिव खबर है जिसे 2 अखबारों ने छापा है। दिल्ली सरकार नर्सरी
खबर दो
जी जी है कि दिल्ली सरकार नर्सरी में दाखिलों के लिए इंटरव्यू रोकने के लिए कानून में बदलाव करने जा रही है। ऐसा करने पर स्कूल प्रबंधकों को 10 साल की सज़ा होगी। इसे हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दोनों अखबारों ने छापा है। रुख अंग्रेजी अखबारों का करते हैं, यहाँ भी मोदी और शरीफ की मुलाकात पहले पन्ने पर छाई हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सुर्खी दी है, ईद के एक हफ्ते पहले ब्लॉकबस्टर की शुरुआत।
ब्लॉकबस्टर की शुरुआत, हाँ बिल्कुल की आने वाली है।
वही हिंदुस्तान टाइम्स ने का कहना है कि मोदी और शरीफ ने रिफ्रेश बटन दबाया है रशिया में हुई मुलाकात में। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि 26/11 और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के वादे के बाद बातचीत का दरवाज़ा खुला। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से भारत में सुर्खियों में था। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि एक ही मुद्दे पर यूपीए की 2 सुर हैं, पहले वो उसने 4 साल पहले इसका विरोध किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये भी बता दीजिए कि आज किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र।
शनिवार को जिन खबरों पर नज़र रहेगी उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिस्तान यात्रा और ग्रीस के कर्ज संकट को लेकर यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक अहम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान जाएंगे, वो भी तुर्कमेनिस्तान के अशगबात में है। इससे पहले मोदी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जा चुके हैं। वो रूस में ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भी हिस्सा ले चुके हैं। यूरोजोन के देशों के वित्त मंत्री ब्रसेल्स में मुलाकात करेंगे। बैठक में ग्रीस सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बैठक रविवार को होने वाली यूरोपीय संघ के 28 देशों के नेताओं की बैठक से पहले अहम समझी जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत होगी। ईरान और अमेरिका दोनों ने ही अपना रुख कड़ा कर लिया है। यमन में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाला 6 दिन का संघर्ष विराम भी शुरू हो चुका है। इस संघर्ष विराम का मकसद उन लाखों लोगों तक मदद पहुंचने देना है जो अकाल की कगार पर हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दाम्बुला में खेला जाएगा। चीन के शंघाई की ओर सुपर टाइफून शानहोम बढ़ रहा है। 8.5 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान के संभावित प्रभाव के पूर्वी चीन के इलाकों से हटा लिया गया है।
और खबरें अब विमंडल से। भारत के लिए आज का दिन बहुत ही अहम रहेगा। सानिया मिर्जा महिला डबल्स और लिएंडर पेस मिक्स डबल्स में खेलेंगे। चलते हैं लंदन।
विंबलडन 2015, दिन भर के खेल का लेखा जोखा। विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की इस विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। इस साल विंबलडन खिताब के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर होगी टक्कर सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के बीच। कल पहले सेमीफाइनल में जोकोविच ने फ्रांस के रिशार्ड गास्के को 2 घंटे 21 मिनट तक चले मैच में सीधे सेटों में 7-6, 6-4, 6-4 से हराया और चौथी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे। 21वीं सीट के खिलाड़ी गास्के के खिलाफ दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी जोकोविच का पलड़ा पहले से ही भारी माना जा रहा था। दोनों के बीच इससे पहले हुए 12 मैचों में से 11 में जोकोविच ने उन्हें हराया था, लेकिन इसके बावजूद जोकोविच ने मैच को हल्के में नहीं लिया। ये उनका 7वां विंबलडन सेमीफाइनल था और लगातार 6ठा, जो कि एक कीर्तिमान है।
I try not to take any great achievement.
मैं किसी भी बड़ी उपलब्धि को हल्के में नहीं लेता। इसे हासिल करने के लिए आपको हर दिन जुटे रहना पड़ता है। इतने ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों में बने रहने के लिए क्या करना होता है, मुझे इसका पता है, तो मैं वो अनुशासन, वो प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहता हूँ। नोवाक जोकोविच के शब्द। जॉब एक बार फिर विंबलडन की खिताबी भिड़ंत में 7 बार के विंबलडन विजेता रोजर फेडरर से जूझेंगे। फेडरर ने सेमीफाइनल में 2013 के विंबलडन विजेता ब्रिटेन के तीसरी सीट के खिलाड़ी एंडी मरे को 2 घंटे 7 मिनट में सीधे सेटों में 7-5, 7-5, 6-4 से पराजित किया। 8वीं बार विंबलडन जीतकर वे अमेरिका के पीट सैंपरस से आगे निकल सकते हैं। उन्होंने 2012 में पीट सैंपरस के 7 विंबलडन जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, मगर इसके बाद से वे कोई और ग्रैंड स्लैम मुकाबला नहीं जीत सके हैं। हालांकि पिछले साल वो विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे जहां जोकोविच ने उन्हें हराया, पर इस बार फेडरर अपने खेल से काफी खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लोग मैच खत्म होने के बाद थोड़ा शांत हो गए। उन्हें शायद उम्मीद रही होगी कि ये मैच 4 या 5 सेट तक चलेगा, पर मैं आज इस सबसे बड़े मौके पर बहुत अच्छा खेला और इसलिए फाइनल में हूँ। रोजर फेडरर के शब्द। भारत के लिए कल का दिन अच्छा रहा। विंबलडन के आखिरी दौर में बचे दोनों भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए हैं। सानिया मिर्जा महिला डबल्स और लिएंडर पेस मिक्स डबल्स में आज विंबलडन खिताब के लिए खेलेंगे। सानिया और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने कल महिला डबल्स के सेमीफाइनल में अमरीका की 5वीं सीट की खिलाड़ियों को बड़ी आसानी से केवल 56 मिनट में 6-1, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सानिया और हिंगिस डबल्स में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी हैं। ये गौरव उन्होंने इसी साल अप्रैल में हासिल किया था, मगर उसके बाद फ्रेंच ओपन उनके लिए निराशाजनक रहा, जहां वो क्वार्टर फाइनल में 7वीं सीट की जोड़ी से हारकर बाहर हो गई थीं। अब आज फाइनल में उनके सामने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने का एक और मौका है। आज महिला डबल्स के फाइनल में सानिया और हिंगिस की पहली सीट की जोड़ी की टक्कर होगी दूसरी सीट की रूस के खिलाड़ियों इकेटेरिना मस्कारोवा और एलेना वेस्निना से। वहीं मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में लिएंडर पेस की जोड़ीदार थी डबल्स में सानिया की पार्टनर मार्टिना हिंगिस। 7वीं सीट की पेस हिंगिस की जोड़ी ने अमेरिका की पहली वरीयता की जोड़ी माइक ब्रायन और बेथनी मैटक सैंड्स को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया और अब वे मिक्स डबल्स का फाइनल खेलेंगे। वैसे भी विंबलडन में आज सबसे बड़ा मैच महिला सिंगल्स के फाइनल का होगा, जिसमें दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की सरीना विलियम्स के सामने होंगी स्पेन की 21वीं सीट की गर्बिना मुकुरुथा। सरीना आज अपना 6ठा विंबलडन और 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ साथ सरीना स्लैम बनाने के इरादे से भी सेंटर कोर्ट पर उतरेंगी, यानी एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के इरादे से। हालांकि उनका कहना है कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। मैं लगातार 4थी बार फाइनल में पहुंची हूं, जो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हूं, कोशिश कर रही हूं। मेरे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा, खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं जीतती हूं तो भी ठीक है, उपविजेता रहती हूं तो भी ठीक, पहले राउंड में ही बाहर हो जाऊं तो भी ठीक। मेरे लिए महत्वपूर्ण केवल ये है कि मैं खेल का आनंद उठा पा रही हूं। सरीना विलियम्स के शब्द। 33 वर्षीय सरीना का मुकाबला स्पेन की 21 साल की खिलाड़ी गर्बिना मुगुरुथा से होगा। मुगुरुथा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतिम दौर तक पहुंची हैं, मगर आज फाइनल में सरीना का सामना करते समय उनमें उत्साह होगा, क्योंकि पिछले साल फ्रेंच ओपन में उन्होंने सरीना को बड़े आराम से सीधे सेटों में हराकर दूसरे ही राउंड में बाहर कर दिया था। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
प्रोग्राम खात्मे पर, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत में कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन किसी समझौते की राह में अब भी कई बाधाएं हैं। ग्रीस की संसद ने यूरोपीय संघ से राहत पैकेज पाने के लिए प्रधानमंत्री अलेक्सी सिप्रास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिप्रास ने संसद के सामने ये माना कि उनके प्रस्ताव में कई बातें ऐसी हैं जो उन वादों से अलग है जो उन्होंने चुनाव में किए थे। यमन में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम के बावजूद झड़पों की खबरें हैं। ये संघर्ष विराम कुछ ही घंटे पहले शुरू हुआ है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने सना में हवाई हमले किए हैं।
चीन में सुपर टाइफून शानहोम की वजह से बारिश शुरू हो चुकी है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि वो जेजियांग प्रांत में तूफान के संभावित प्रभाव वाले इलाकों से 8.5 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही हटा चुके हैं। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे दीपक जसरूठिया। अगली मुलाकात 1 घंटे बाद विश्व भारती में।